बीते राग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव कार नमः शिवो समारिते लास्ट क्लास में आ नहीं पाया था, सॉरी। क्या थी आप लोगों ने डिस्कशन लास्ट क्लास में से? हेलो,
सॉरी, दोबारा
ये मतलब आई कुड नॉट अटेंड लास्ट टाइम, सॉरी। तो उसमें आप लोगों ने क्या किया था फिर लास्ट? कुछ क्लास हुई थी या कैंसिल हो गई थी?
नहीं, फिर हम नहीं कुछ किया था।
ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो हम डिस्कशन कर रहे थे सात तत्व संबंधी, मतलब जो व्यवहार रत्नत्र है उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन शुरू हो गया था, और छह द्रव्यों के लक्षण की बात हम लोगों ने कर ली थी, राइट? तो इसका छंद नंबर सात हो गया है। छंद नंबर आठ पर करते हैं। चेतन का दिन तो अजीब है, पंच भेद ताते हैं, फुटगल पंच वरण रस गंध तो फरक होते जाते हैं। फुटगल द्रव्य के बीज गुणों की बात हो गई। फिर जो जीव और फुटगल को चलने में सहायक होता है वह धर्म द्रव्य है जो कि अरूपी है, और तिष्ठित होए अधर्म सहाय जिन मूल मूर्ति निरूपी, और जो उनके रुकने में सहायक होता है वो अधर्म द्रव्य है और ये भी अरूपी है। सकल द्रव्य को बास जास में सो आकाश पे छाने नियत वर्तना निश दिन सो व्यव हर काल परिमानो यो अजीब अब आश्रव सुनिए मन वच काय से योगा मिथ्या अविरत अरुकषाय पर मात सहित उपयोग। सात तत्वों की बात चल रही है, उसमें जीव तत्व की हो गई। अजीव तत्वों में छह द्रव्यों को वापस किया, उसमें जीव तो सारे आई गए हमें छोड़कर, फिर फुटगल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सब द्रव्य अजीव कहलाते हैं, ठीक है। जीव कितने हैं, जीव तत्व कितने हैं? जीव तत्व एक, और जीव तत्व को छोड़कर बाकी सारे द्रव्य छह के छह द्रव्य वो सब अजीव। उसमें से पुद्गल जिसके बीस गुण है, मतलब स्पर्श के अलग, रस के अलग, गंध के अलग, स्वर्ण के अलग, धर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है, अधर्म द्रव्य जो इन दोनों को रुकने में सहायक है, आकाश द्रव्य जो अवगाहना देने में सहायक है, और काल द्रव्य जो परिणमन में सहायक है, ठीक है। इसमें काल द्रव्य को हटा दें और पांच द्रव्यों को रखें तो इनको अस्थिकाय कहते हैं। अस्थिकाय मतलब जिसके पास बहुप्रवेशी पना है, बहुत जो आकाश द्रव्य है ये सबसे बड़ा है, इसका अनंत विस्तार है, ये लोकाकाश के बाहर भी आकाशीय आकाश है। लेकिन काल द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य ये सब लोकाकाश के अंदर है, ठीक है। तो एक प्रश्न आता है जिनागम में कि आप अस्थिकाय को बोलते हो कि पांचों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, और एक जगह बोलते हो बिना निमित्त के काम नहीं होता है और बिना कारण के काम नहीं होता, राइट? पांच समवाय होते हैं तो उनके मिलने पर ही कार्य होता है। तो अलोकाकाश में पर्याय होती है कि नहीं होती, ये क्वेश्चन उठाया जाता है। अलोकाकाश की पर्याय होती है या नहीं होती?
होती है।
तो लेकिन वहां पर काल द्रव्य तो है नहीं,
परंतु आकाश तो एक तरंग द्रव्य है ना।
हाँ, तो लेकिन काल द्रव्य का एक द्रव्य से लेना देना नहीं होता ना, कुछ काल द्रव्य का तो एक प्रदेश से लेना होता है, राइट? काल द्रव्य एक प्रदेश ही होता है, खरे? तो जिस प्रदेश पर जो कालाणु होता है वो कालाणु सिर्फ उसी प्रदेश के परिणमन में निमित्त होता है, बाकी के प्रदेश में नहीं होता निमित्त। तो आकाश द्रव्य के पास, लोकाकाश के बाहर तो कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर कालाणु है।
परंतु वैसा बोल सकते कि परिणमन तो वस्तु का स्वभाव है, सब वस्तु परिणमन रूप है।
लेकिन हर एक कार्य परिणमन भी एक कार्य हुआ, पर्याय हुई, वो कार्य तभी होता है जब पांच समवाय इकट्ठे हो, राइट? स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य, काल लब्धि और निमित्त। तो अलोकाकाश के परिणमन में चार चीजों को मिल गई, स्वभाव है वहां पर, वहां पर भवितव्य है, वहां पर काल लब्धि भी है, पुरुषार्थ भी है काल आकाश द्रव्य का, लेकिन निमित्त कहाँ है? निमित्त भी तो चाहिए ही ना, वो काम नहीं करता, निमित्त से काम नहीं होता, काल द्रव्य में परिणमाता नहीं है। लेकिन जब हम परिणमते हैं तब काल द्रव्य होता है, पानी हमें तैराता नहीं है, जब हम तैरते हैं सब पानी होता है। तो फिर कैसे
आकाश एक एक सड़ंग द्रव्य है, तो वो उसमें जो क्योंकि उसमें वो पार्ट ऑफ इट में काल है, तो वो सारे को ही परिणाम देगा ना। आई डोंट नो हाउ टू,
मतलब ऐसे ही है इसका आंसर कुछ। तो इसका जब आगम में आंसर आया तो ऐसे आया जैसे कि मैं यहाँ पर एक बहुत लंबा बांस का डंडा है, बहुत लंबा, इसका बैम्बू का बहुत बड़ा एक डंडा है, ठीक है, और मुझे इस डंडे को ऊपर से शेक करना है, ऊपर से हिलाना है, राइट, सबसे टॉप पर, और मेरे पास उसका नीचे का बस बेस है, तो मैं उतने ऊपर तक उसको हिलाने के लिए कैसे, कितने ऊपर तक जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, मेरी तो इतनी हाइट है ही नहीं।
नीचे का तो वो वाइब्रेट हो सारा
करेक्ट, नीचे का हमें भी हिलाएंगे तो ऊपर का ऑटोमेटिकली हिलेगा, क्योंकि ये पूरा एक द्रव्य है, राइट? तो आकाश द्रव्य चूंकि अखंड है, एक है, इसलिए उसको उसके बाहर के परिणमन में भी, अलोकाकाश के परिणमन में भी निमित्त काल द्रव्य को ही कहा है, ठीक है? ओके, ठीक है। तो ये छह द्रव्य हैं, इनमें से किसी को कोई क्वेश्चन किसी भी द्रव्य के बारे में? क्योंकि हम इन छह द्रव्यों से ही घिरे हुए हैं और सारा साइंस तो सिर्फ एक द्रव्य के अराउंड रिवॉल्व करता है, मैटर खुदगल के अराउंड। किसी को कोई भी क्वेश्चन? धर्म द्रव्य की जरूरत क्यों है, अधर्म द्रव्य की क्यों है, हम इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं शायद, लेकिन
धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का और कुछ आता है कहाँ भी? अच्छा, हमको तो ऐसा है कि वो सहाय होते हैं और एक ही द्रव्य है सारे लोक व्यापी हो, और कुछ यानी अधर कहाँ भी आगम में उसके बारे में और कुछ आता है? हम इतना ही जानते हैं कि वो गति है तत्व या स्थिति है तत्व, उसका गुण है वो निमित होता है जब जीव और पुद्गल परिणमन करते वो स्थिति करते गति या स्थिति करते हैं, तो स्वयं गति और स्थिति करते हैं, परंतु और कुछ इसके बारे में बता के?
मैं बताता हूँ आपको, जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है, इवन आकाश राइट, लेकिन आकाश के साथ ये है कि हमको भी आकाश तो नहीं दिखता, बट वी कैन सी द स्पेस, हमें जगह दिख जाती खाली, राइट। तो ये तीनों द्रव्य, काल द्रव्य भी, ये सब अमूर्तिक है, इनमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है, वर्ण नाम का गुण नहीं है,
बराबर।
तो इनको देखा नहीं जा सकता। अब जिन चीजों को देखा नहीं जा सकता या सुना नहीं जा सकता या छुआ नहीं जा सकता, वो चीजें इंद्रियों से अगम्य हो जाती हैं। आप इंद्रियों से उनकी वैलिडिटी नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियां इंद्रियों का सब्जेक्ट ही नहीं है। यदि आप गुलाब जामुन का टेस्ट ईयर से टेस्ट करना चाहो, तो ईयर का वो सब्जेक्ट ही नहीं है, राइट। वो ईयर से ऐसे ही ये वाले धर्म अधर्म द्रव्य की परीक्षा इंद्रियों से तो पॉसिबल है नहीं। तो नाउ इंद्रियों से है नहीं, केवल ज्ञान हमको पता नहीं जो हम देख रहे होते हैं। नाउ वी हैव ओनली वन वे लेफ्ट एंड दैट इज द वे ऑफ लॉजिक। वो यदि युक्ति से अनुमान से सही बैठता है तो फिर वी कैन बिलीव इट, राइट। ठीक है, तो पंचास्तिकाय ग्रंथ में आई डोंट नो, आई मस्ट हैव टेकन इट पहले, ये हो चुका होगा एक बार, बट फिर वापस पंचास्तिकाय ग्रंथ में जहाँ धर्म द्रव्य की बात करी, वहां एक क्वेश्चन उठाया, वहां बोला कि देखो आकाश में रहने की जगह मिली रही है लोगों को, आकाश द्रव्य हमारे पास है ही, काल द्रव्य उनको परिणमा के चला रहा है, रुका रहा है, लिटा रहा है, राइट। सो ये चलने के लिए और रुकने के लिए आपको दो नए द्रव्य बनाने की क्या जरूरत है? आकाश को ये काम दे दो ना, उसने जगह दे रखी है, वही दे देगा कि वही चला लेगा और वही रुका लेगा? या फिर ठीक है, आपको लगता है कि वो एक साथ चलाएगा रुकाएगा कैसे? तो ठीक है, तो चलाने का काम आकाश को दे दो और धर्म द्रव्य को रख लेते हैं रोकने के लिए, लेकिन एक धर्म द्रव्य तो कम होगा, हम क्यों छह छह रखने हैं? दैट्स द क्वेश्चन। क्या हमने इसको डिस्कस किया है पहले?
याद नहीं है, मगर हमने वो क्या है प्रवचन सार में भी कुछ वैसा वो की थी गाथा,
हाँ
मगर वो भूल गई हो तो
हाँ
इसलिए।
हाँ तो मतलब क्या कारण, मतलब क्या कारण है कि हम धर्म द्रव्य को अलग से माने, आकाश द्रव्य को इसका काम दे देते हैं? एक नया द्रव्य बनाने की क्या जरूरत है? जो लाइक जैसे कि घर आपको रहने के लिए देता है, तो घर आपको चलने के लिए भी तो देता है, नदी आपको रहने के लिए देती है, तैरने के लिए भी देती है, तो ऐसे ही आकाश सारे द्रव्यों को रहने के लिए देता है, एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो लेट देम वॉक और फ्लाई। नया द्रव्य क्यों बना रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है? तो एनी एनी आंसर आप लोगों की तरफ से? कौन कौन है अभी हमारे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में?
प्रीति बेन है,
प्रीति,
ओके
सचिन भाई है,
ओके,
दूसरे एक दो है, तुषार भाई तमे छो, टी मोदी ऐसा लिखा है,
वो सुशीला छे,
सुशीला बेन।
ओके। हाँ तो क्या कारण है फिर, क्यों रखना है? धर्म द्रव्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि दिख तो किसी को रहा नहीं है, वो कोई और धर्म उसको मानने को भी तैयार नहीं है। अब जैन धर्म क्यों मानने को कह रहा है? तो उसमें आंसर ऐसा दिया कि ठीक है, आकाश को हम चलने का काम दे देते हैं, तो अब यहाँ पर एक जीव है, वो जीव श्रेणी मान रहा है, छायिक श्रेणी, उसको केवल ज्ञान होता है, अंतर्मुहूर्त में उसकी आयु खत्म होती है, आयु खत्म होती है तो वो अब क्या करेगा? जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, तो वो ऊपर गमन करेगा। ऊपर गमन करके यदि आकाश जीव को चलाता है, राइट, तो फिर इस लोक में लोकाकाश और अलोकाकाश का भेद नहीं बचेगा, क्योंकि जीव जाएगा और वो सिद्धि शिला में जाके नहीं रुकेगा, क्योंकि आकाश तो उसके भी ऊपर है।
हाँ।
तो आकाश चलाने वाला हो तो जीव की गति कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि आकाश अनंत है और जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, तो वो अनंत काल तक सिर्फ ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। आकाश कभी खत्म होगा नहीं, जीव कभी रुकेगा नहीं। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसा आता है कि जीवों की स्थिति तनुवात वलय के अंत में रुक जाती है, वो सम श्रेणी में वहां पर विराजमान हो जाते हैं। तो जीव यदि सम श्रेणी में जाके रुक गया है, इसका मतलब है कि आकाश उसको नहीं चला रहा था। आकाश चला रहा होता तो जीव वहां नहीं रुकता और आगे जाता। तो इसका मतलब है कि आकाश के अलावा कोई और द्रव्य है जो कि एज अ मीडियम ऑफ मोशन काम करता है, और वो द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं है, इसलिए जीव उसके बाहर नहीं जाता। इसके लिए कोई ऐसा द्रव्य होना चाहिए जो कि लोकाकाश के अंदर हो और आकाश से डिफरेंट हो, जिसके कारण गति होती है। नहीं मानोगे तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी ये वाली। That's why a धर्म द्रव्य has to be there। उसके बिना नहीं चलेगी व्यवस्था। ठीक है, आपको लगता है 343 गणराजू का लोक का आपने देखा ना, वो पुरुषाकार पैर फैलाकर है जो ऐसा अपना दिखता है, तीन लोक का चित्र। सो दैट तीन लोक का चित्र इज महास्कंद, इट्स अ पुद्गल का स्कंद बहुत बड़ा, विच हैज बीन सराउंडेड बाय तीन वात्वलय होते हैं इसमें, राइट? घन वात्वलय, तनु वात्वलय, घनोदधि वात्वलय। घन, घनोदधि और तनु, तनु वात्वलय इज द लास्ट। तो दीज थ्री आर सस्पेंशन, जितने बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा रखते हैं, वो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अनुपम कारनामा है पूरा का पूरा तीन लोग। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि तीन लोग का चित्र ऐसा जो बनता है, ये चित्र ऐसा ही क्यों बनता है?
वो एक तो वो वात्वलय उसके वो शेप में होंगे, वो भी रीजनिंग दे सकते
नहीं तो ऐसे क्यों है? फिर हम बहुत सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ धर्म द्रव्य, क्योंकि धर्म द्रव्य जहां जहां है वहां वहां पांचों द्रव्य हो सकते हैं, वहां वहां जीव और पुद्गल ट्रेवल कर सकते हैं। तो यदि मध्य लोक में आके इस तीन लोक की, मतलब मध्य लोक की चौड़ाई एक राजू रह जाती है, क्योंकि एक राजू में ही धर्म द्रव्य फैला है जहां पर बाकी के पुद्गल परमाणु आके वो रचना कर सकते हैं। उस एक ही राजू में जीव कहीं अलग अलग गतियों से आके मरण और जन्म कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? पुद्गल परमाणुओं की ट्रेवलिंग कॉन्स्टेंटली चल रही है, वो आ रहे हैं, वो रुक रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो एक्चुअल में ऐसा जो शेप हमको मिला है, ये शेप इसलिए, जैसे कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, तो सिलेंड्रिकल ग्लास में मैंने पानी भरा, तो पानी कैसा हुआ? सिलेंड्रिकल। तो पानी का शेप सिलेंड्रिकल क्यों है? क्योंकि स्पेस वहां पर उतनी ही था ठहरने के लिए। ऐसे ही धर्म द्रव्य ने इतनी ही जगह मूवमेंट के लिए दी थी। आकाश द्रव्य के पास तो बहुत सारी जगह थी, बट आकाश ने नहीं बनाया तीन लोक। आकाश के उस हिस्से में जहां पर धर्म और अधर्म द्रव्य ट्रेवलिंग को अलाउ कर रहे थे, वहां पर जीव और पुद्गलों से ये लोक बना है, और वो उसको देखते तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पुद्गल का बना हुआ स्कंद है, लेकिन पुद्गल उसी शेप में क्यों है? जीव से शेप में सिंपल सिलेंडर बन जाता, कोई 3D का एक क्यूब बन जाता, ऐसा अजीबोगरीब क्यों बनाया? कि उसमें क्वेश्चन कैसे करें? धर्म द्रव्य का फैलाव विस्तार ही ऐसा है, राइट? ठीक है, वो मतलब पूरी साइंस है, मतलब उतने पे ही फैल सकते हैं, हमको ईश्वर ही लगता है कि बहुत बड़ा पुद्गल का एक डब्बा होगा, उस डब्बे के अंदर धर्म द्रव्य भरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुद्गल धर्म द्रव्य के कारण घूम रहा है उसकी बाउंड्रीज में। इट्स एक्चुअली कंटेनर ऑफ धर्म द्रव्य एंड अधर्म द्रव्य इन विच जीव एंड पुद्गल आर देयर एंड नॉट अदर वे राउंड।
वो वैसे तो भी नहीं चाहता, बट गुड गुड, इट मेक्स सेंस।
हाँ, सो इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य मतलब लगते फिक्शन जैसे, लेकिन यदि लॉजिकली सोचने जाए तो पता पड़ता है कि मतलब ये क्यों जैन धर्म में छह ही द्रव्य बोले, ना ज्यादा ना कम, एक को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, एक भी द्रव्य को, एंड एक भी द्रव्य को एक भी कोने में रूल आउट नहीं कर सकते कि लाइक यू फाइंड सम स्पेस जहां पर एक भी एब्सेंट है। आप जिस क्षेत्र को बोलेंगे, यदि वो लोकाकाश का क्षेत्र है तो वहां पर अनंत जीव, अनंतानंद उद्गल, मैं एक प्रदेश की बात कर रहा हूँ छोटी सी जगह की, वहां पर अनंत जीव, अनंतानंद उद्गल और धर्म अधर्म आकाश काल, ये सारे के सारे द्रव्य वहां पर रहेंगे ही रहेंगे हर जगह। देयर इज नॉट अ सिंगल स्पेस जिसमें छह द्रव्य नहीं रहते। क्वेश्चन किसी को छह द्रव्यों में से? No question. ठीक है, I have one question. ये वाला भी I think we have discussed it before. But ठीक है, we'll do a revision. कि छह द्रव्य is the most important syllabus. जैन दर्शन के सिर्फ तीन ही syllabus हैं, तीन ही chapters हैं syllabus में। पहला छह द्रव्य पंचास्तिकाए, दूसरा सात तत्व नौ पदार्थ और तीसरा सीधा मोक्ष मार्ग। That's it. द्रव्य संग्रह के तीन चैप्टर दिए हैं, पंचास्तिकाए के तीन चैप्टर्स दिए हैं। जितने भी जो मूल सिद्धांत ग्रंथ उन्होंने ऐसे ही किया है, पहले चंद्रव्य का वर्णन किया, देन सात्व का वर्णन किया एंड देन मोक्ष मार्ग पर पंचचूली का। तो सिलेबस कुछ है ही नहीं जैनिज्म का, सिर्फ ये है। तो हमको इस पर लेकिन आज्ञा सम्यक होना चाहिए, परीक्षा सम्यक के साथ, मतलब हमें परीक्षा करके क्रिटिकल इवेल्युएशन करना है एंड देन वी हैव टू हैव अनशेकेबल बिलीफ। ये फिर आप कल को कोई कुछ भी करे, नाउ इट शुडंट बी शेकन बाय यू नो एनी एविडेंस, कुछ भी होकर इट शुडंट शेक अप। यदि आपने एक बार एक कलेक्टिव इंटेलेक्ट से इसको डिसाइड कर लिया कि ऐसा ही है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक। ये हम कर चुके हैं एक बार डिस्कस, आप लोग को याद होगा। काल द्रव्य कितने हैं?
असंख्यात।
असंख्यात, अच्छा। काल द्रव्य में प्रदेश कितने हैं?
एक एक
एक प्रदेश, एक प्रदेशी, इसलिए वो अस्तिकाय नहीं कहलाता क्योंकि वो एक प्रदेशी है। अच्छा, और धर्म और अधर्म द्रव्य में कितने प्रदेश है?
असंख्यात प्रदेश,
असंख्यात प्रदेश है। राइट राइट राइट। तो ऐसा क्यों किया, मतलब या तो धर्म अधर्म द्रव्य को असंख्यात प्रदेश दे देते जो दिए हुए, और तो काल द्रव्य को भी असंख्यात प्रदेश दे देते, उसका डिफरेंट डिफरेंट क्यों किया? इन दो को एक एक रखा और काल द्रव्य को एक एक प्रदेशी क्यों किया, उसको भी एक द्रव्य बना देते पूरा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन है, आपको चलना है यहाँ से वहां तक, तो आपको धर्म द्रव्य भी लगेगा और काल द्रव्य भी लगेगा, ठीक है? तो लेकिन तो फिर वस्तु अवस्था में ऐसा क्यों किया कि धर्म द्रव्य तो ठीक है एक ही है, लेकिन वहां से यहाँ तक जाने में मैं आकाश द्रव्य एक काल द्रव्य बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चूज करूंगा, क्योंकि हर एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है, तो मैं जहां रहूंगा वहां का काल द्रव्य मुझे निमित्त होगा। तो ये क्या बात हुई, मतलब
आपने समझाया सब था? याद नहीं आता।
आई थिंक ऐसा कुछ है ना कि वो परिणमन के लिए, क्योंकि यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो परिणमन के लिए वो मतलब अनंत, मतलब जो क्षेत्र हम जाते हैं राइट, तो वो हर एक क्षेत्र में जो अलग अलग काल नहीं हो तो फिर परिणमन कैसे होगा, ऐसा कुछ लॉजिक आपने दिया था, ऐसा कुछ याद आ रहा है।
ओके, और फिर धर्म द्रव्य को भी अलग अलग क्यों नहीं किया? तो इसमें ये देखा था हमने उस टाइम, ये
गमन एक ही द्रव्य निमित्त हो सकता है।
क्यों क्यों क्यों?
जब परिणमन की बात करते हैं तो
अच्छा मैं बताता हूँ।
हाँ,
तो जब परिणमन, जब गमन होता है, एक द्रव्य का गमन होता है, तो गमन कभी खंड खंड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा द्रव्य मेरा इंडिया में है, आधा यूएस पहुंच जाए। तो द्रव्य होगा तो समूचे द्रव्य के असंख्य प्रदेशों का होगा, ठीक है? तो यदि असंख्य प्रदेशों का एक साथ गमन हो रहा है, मतलब ये एक कार्य हो रहा है। इसमें दो द्रव्य निमित्त होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एक इस साइड खींचेगा एक उस साइड खींचेगा। तो गमन चूंकि अखंड द्रव्य का होता है, इसके लिए गमन के लिए एक ही द्रव्य निमित्त होना चाहिए, वॉल्यूम एक ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? दो नाव पर आप एक साथ ट्रेवल करोगे तो गलत बात है, दो नाव पर एक साथ पैर नहीं रखे जाते, राइट? आपने सुना है ना, दो नाव पर एक साथ पैर नहीं रखते, तो नहीं तो आप अलग अलग हो जाओगे, क्योंकि दो नाव अभी नहीं तो आगे जाके अलग अलग हो ही जाएगी, एंड इट्स नॉट कंट्रोलेबल नहीं है, वो बहुत रिस्की है। इसके लिए जब गमन होता है तो समूचे द्रव्य का होता है, इसके लिए उसके प्रदेशों में अलग अलग डिवाइड संभव नहीं है। लेकिन जब परिणमन होता है तो वो द्रव्य के एक एक प्रदेश का होता है, क्योंकि द्रव्य में सर्वांग में पर्याय होती है, तो पर्याय तो समूची एक है, लेकिन हर एक प्रदेश पर उसके अंश है, बराबर?
हाँ।
तो यहाँ पर जैसे कि हम शरीर को देखते हैं, तो शरीर पर मेरे हाथ में हर जगह एक सा कलर नहीं है, कहीं पर कुछ काला काला एक ब्लॉट आ गया होगा, कुछ लग गई थी तो, कभी पुराना, कुछ बहुत पुराना ब्रूज है तो उसके निशान होंगे। तो एक ही हाथ में अलग अलग जगह पर, मतलब ये तो समान जातीय द्रव्य पर्याय है ना, हाथ कंध है राइट, तो ये तो एक द्रव्य है स्कंध वाला, तो इसका परिणमन एक सा क्यों नहीं है? क्योंकि इसको एक द्रव्य निमित्त नहीं है, हर एक परिणमन में इसके क्षेत्र के अलग अलग द्रव्य निमित्त है। यदि काल द्रव्य भी एक हो जाता तो एक सा ही परिणमन सर्वांग होता। तो जब आपका हेडेक होता उसी समय आपको टो में भी पेन होता, आपको पेट में भी दर्द होता, हर जगह होता, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए छह द्रव्य की जो व्यवस्था है ये सुंदरतम व्यवस्था है। प्रदेशों के गमन के लिए आपने समुद्घात का नाम सुना है? समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं?
छह प्रकार, पांच,
छह, सात प्रकार के होते हैं समुद्घात। वेदना समुद्घात होता है, मारणांतिक समुद्घात होता है, प्रशायसिक समुद्घात होता है, तो ये सब होता है, ठीक है? तो समुद्घात किसे कहते हैं, कुछ आइडिया है? समुद्घात
आत्मा के प्रदेश जो मूल शरीर के बाहर निकलते हैं,
अमेजिंग, बराबर ऐसे होता है। आपको पता है एक 5 प्रकार के शरीर होते हैं, कौन कौन से?
उदारिक तेजस कारमान वैक्रिय और
आहारक
आहारक
आहारक। ये आहारक शरीर क्या होता है?
वो जो शरीर के बाहर वो पुतला सा निकलता है और उसको जहाँ जाना होता है वो जाकर फिर 48
किसका
मिनट
पुतला? किसका
वापस आ जाता है अंदर मूल शरीर।
किसका किसको होता है आहारक शरीर, किसको हो सकता है?
भावलिंगी मुनिराज
ओके। और किस कारण निकलता है? सिर्फ 2 कारण से, या तो किसी शंका के समाधान के लिए, क्योंकि अचानक से बहुत बड़ी क्वेरी आ जाए, या फिर तीर्थ वंदना के लिए, ठीक है, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए, राइट। तो जब ये पुतला मूल शरीर को छोड़ के बाहर निकलता है तो उन
चैत्यालय की वंदना जब तो इतना उसकी गति भी इतनी फास्ट होती होगी अनुभव जी से
बहुत फास्ट होती है।
वो आहारक शरीर 2.5 द्वीप के बाहर जा सकता है कि नहीं?
हाँ, तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो पहले तो हम समझे, हम थोड़ा हम ये समझना चाह रहे हैं कि धर्म द्रव्य की व्यवस्था कैसे चलती है, ठीक है। तो एक भावलिंगी मुनिराज, क्योंकि ये ले रहा हूँ तो उसमें हमको 2-3 चीजें एक साथ पता पड़ेंगी। तो भावलिंगी मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज नहीं, उनकी तप से रिद्धि से उनके आहारक शरीर प्रकट हो जाता है। अब इस आहारक शरीर में उनके दाएं हाथ से, मतलब उनके ऊपर से 2.5, छोटा सा, मतलब बहुत छोटी हाइट पे एक पुतला निकलता है, धवल होता है वो। अब वो जैसा भी होता है तो 2 कारणों से ही निकलता है, ठीक है। और वो ध्यान नहीं करते कि चलो निकलेगा, और ये सहज होता है, ये उनके हाथ में वश में नहीं होता, ये इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, दे डू नॉट प्लान इट, क्योंकि उनकी शिक्षा ही नहीं है, भाव लिंगी संत है। तो जब उनके
अच्छा उसकी इच्छा के बिना निकलता है ये,
सॉरी 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 क्या
वो उसकी उसकी इच्छा के बिना ही ये निकलता
इच्छा, मतलब इच्छा मतलब दे डू नॉट ऑर्डर इट के चलो हम निकल के जाओ।
है? बस उसकी इच्छा होती है कि मैंने वंदना करनी है और वो पुतला निकल
हाँ
कर।
हाँ तो क्या होता है, या तो वो बैठे हो और उनको शंका हो जाए, और वो शंका बहुत गंभीर हो उनको, मतलब रियल क्यूरियोसिटी जैसे कहते हैं कि इसको होनी चाहिए इसका समाधान। तो यदि आसपास कहीं केवली का समक्षरण या श्वेत केवली मुनिराज विद्यमान हो तो वो पुतला निकलता है सहज ही, और मतलब वो दूर देश में विराजमान हो तो वहां तो वो जा नहीं सकते, तो वो पुतला निकलता है। तो पुतला निकल के जाके वहां पर अंतर्मूत के अंदर जाता है, शंका करता है, समाधान लेके आ जाता है, ठीक है। ये एक इंस्टेंस हुआ। दूसरा, जैसे कि बारिश का मौसम है, चातुर्मास चल रहे हैं, या फिर उनकी जो हालत है वो अशक्त है, वो ज्यादा नहीं चल सकते, लेकिन उनके तीर्थ वंदना करने का विकल्प उठता है। तो बहुत तीव्र विकल्प जब उठता है तीर्थ में, तो उनका वो पुतला आता है और अंतर्मूर्त के अंदर वो तीर्थों की वंदना करके आ जाता है, बहुत सारे। अब क्वेश्चन है कि 2.5 द्वीप के बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य क्षेत्र नहीं है, तो नहीं जा सकता। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य गति का जीव नहीं जा सकता। सी, यदि एक देव मित्र कुंदकुंद आचार्य देव को विदेह क्षेत्र लेके गया भरत क्षेत्र से, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनको नंदीश्वर द्वीप भी ले जा सकता।
हाँ
वो जस्ट निमित्त था। इस मनुष्य देह में नंदीश्वर द्वीप, 2.5 द्वीप के बाहर जाने की उपादानगत योग्यता नहीं है। तो देव खुद जा सकता है, लेकिन जैसे वो उनको उठाकर विदेह क्षेत्र तक ले जा गया, ऐसे वो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं ले जा सकता।
वो बराबर। हाँ
तो मतलब देव उनको लेके गया विदेह क्षेत्र तक, तो वो इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि वो देव था और वो ले जा सकता था, वो इसलिए जा पाए क्योंकि वो जा सकते थे। यदि देव ले जा पाए तो देव तो नंदीश्वर द्वीप भी ले जाए, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, उस तरीके से देखे तो।
वो तो सर शरीर गए थे,
हाँ, वो तो सर
इसलिए हुआ कि ये पुतला निकलता है तो वो पुतला जा
नहीं,
सकता
नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले तुम इस तरह शरीर वाली व्यवस्था को देखें तो हमें ये तो होनी नहीं चाहिए कि देव मुनिराज को लेके गया। देव लेके इसलिए गया क्योंकि उनमें योग्यता थी, भवितव्यता थी, वो हो सकता था काम। ठीक है, ठीक है, वो तो निमित्ताधीन से बोल देते हैं हम कि देव लेके गया, लेकिन परमार्थ तो मतलब वो नहीं जा पाते तो कौन ले जाने वाला था फिर। राइट, नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, जब शरीर निकलता है तो मैंने आपको जैसे बोला था अभी कि द्रव्यों का गमन अखंड होता है, तो ये जो आहारक शरीर निकला है ये इसके इसमें उन्हीं मुनिराज की आत्मा के प्रवेश है, ये कोई मशीन नहीं है।
बराबर,
ये आत्मा के प्रवेश है, ज्ञान ट्रेवल कर रहा है, तो ये ब्रेक नहीं होंगे कि यहाँ पर मुनिराज की आत्मा यहीं बैठी है और उनके वो पुतला पूरी दुनिया में घूम रहा है तो वो अलग से एक स्पिन ऑफ हो गया, ऐसा नहीं है।
बराबर,
वो जैसे कि हम एक रबर को खींचते हैं तो रबर टूटती नहीं है, फैलती जाती है, ऐसे ही वो आत्मा के प्रवेश अनडिवाइडेडली जुड़े हुए हैं, वो टूटते नहीं है, तो वो कहीं भी जाएगा वो आत्मा अभी मनुष्य गति का ही है, तो ढाई द्वीप के बाहर नहीं जाएगा। जिसने मनुष्य शरीर को नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब लेकिन ये ट्रेवल कैसे हो रहा है इतना, ढाई द्वीप यानी कि आप समझ रहे हो, हम जब सब सोचते हैं कि चलो सिद्धिशिला में मुनिराज रहते हैं, भगवान रहते हैं, तो सिद्धिशिला कितनी सी होगी, वो ऊपर छोटा सा एक चांद बना रहता है, उतनी सी सिद्धिशिला होती है। डू यू इवन रियलाइज कभी कि हम जहां जाएं वहां पर सिद्धिशिला है, उसके जस्ट ऊपर सिद्धिशिला 45 लाख योजन में, 45 लाख योजन जितना आपको ऊपर आसमान दिखता है उससे कई गुनी बड़ी सिद्धिशिला है। आपका स्पेस जितना हमें नोन स्पेस है उस स्पेस से बहुत बड़ी सिद्धिशिला है। हेलो, तो मतलब 45 लाख इन इज द एरिया ऑफ ढाई द्वीप। इस ढाई द्वीप में वो आत्मा अंतर मुहूर्त में गमन करके दर्शन करके वापस आ सकता है।
दोबारा बोलिए प्लीज।
इस ढाई द्वीप में वो आत्मा मनुष्य शरीर में जो बैठा है और वहां से निकल के उसने वंदना वगैरह करी है, ही कैन ट्रेवल दिस मच डिस्टेंस इन ढाई द्वीप इन जस्ट 48 मिनट। सौदर्मिन तो करती है तांडव नृत्य के समय, तांडव नृत्य में वो एक बार पैर पटकता है और फिर वंदना करके आता है पूरे ढाई द्वीप के अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की और फिर दूसरा पैर रखता है। जब भगवान का जन्म होता है उनको पांडुकशिला में लेके जाते हैं, पांडुकशिला से लेके वापस आते हैं और वापस आकर वो भगवान को उनके माता पिता को सौंपते हैं, तब सौधर्मेंद्र हर्ष से उत्साह से तांडव नृत्य करता है। जब वो तांडव नृत्य करता है तो वो अपना एक पैर यहाँ जब रखता है पटकता है या फिर एक थप्पी बजाता है, क्लैप, वन क्लैप, और इसके बीच दूसरी क्लैप बचाता है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है ना दो क्लैपिंग के बीच में, उतने में वो ढाई द्वीप के जैनालयों की वंदना करके आ जाता है। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने एक्चुअली बोला कि टाइम इज रिलेटिव, टाइम बहुत रिलेटिव है आपकी स्पीड से, यदि आप अपनी स्पीड को तेज करोगे तो दुनिया स्लो हो जाएगी। राइट, आपने लाइक इट्स रिलेटिव। तो सौधर्मेंद्र के पास वैक्रियक शरीर है जो कि सूक्ष्म है, हर जगह धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य इज द फैसिलिटेटर, धर्म द्रव्य की ताकत ये है कि एक पुद्गल परमाणु शुद्ध या फिर एक शुद्ध जीव एक समय में 14 राजु गमन कर सकता है, उसके सामने 45 लाख योजन कुछ भी नहीं है, और एक आवली में कितने समय होते हैं, जगन्य परीत संख्या, इट्स टू मच। तो एक्चुअली वो उतने में बहुत आराम से वंदना करके आता है, हमको लगता है कि क्या हुआ इस क्लैपिंग में दो बार क्या हुआ ये, बट फॉर हिम इट्स अ प्रॉपर वंदना। इट्स हार्ड टू इमेजिन बट ये कैपेबिलिटी है धर्म द्रव्य की और जीव और पुद्गल द्रव्य की, इनकी क्रियावती शक्ति और धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व पना, इन तीनों की जो मैत्री है, इट्स अमेजिंग। हम लोग अभी भी साइंस इज वेरी मच क्यूरियस, द प्रेजेंट डे साइंस इज वेरी मच क्यूरियस अबाउट टाइम ट्रेवल। एंड टाइम ट्रेवल के बाद एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि कैन यू बी एट टू प्लेसेस एट वन पॉइंट, आप दो अलग दो टाइम एक टाइम पर दो अलग अलग जगह पर हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, राइट? एक्चुअली हैपेंस, लेकिन वो टाइम इतना तेज होता है कि हमको लगता है कि आदमी यहीं पर है, बट सौदर मिंद्र ही गोज एंड ही कम्स बैक, इट्स लाइक अ फ्लिक, थोड़ा सा छोटा सा एकदम। राइट, तो वो जो समुद्घात होती है उसमें भी जब जीव ट्रेवल करते हैं, आत्मा ट्रेवल करता है, तो उसके प्रदेश अखंड होते हैं, इसलिए दैट इज रिक्वायर्ड कि धर्म द्रव्य एक रहे, नहीं तो लोक की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एट द सेम टाइम काल द्रव्य इज रिक्वायर्ड कि वो अलग अलग रहे, नहीं तो फिर ये जो ट्रेवल कर रहा है ये एक ही जगह ट्रेवल करेगा, इतनी सारी जगह नहीं जा पाएगा।
अनुभव जी, ये दिस माइट बी मे बी ऑफ टॉपिक थोड़ा, परंतु ये आपने बोला कि एक समय में दो जगह हो सकता है, तो मैं मुझे लगता है प्रवचन वो महावीर भगवान वो निर्वाण
नहीं नहीं एक समय ये प्रेजेंट डे साइंस की इंक्वायरी है, इट्स नॉट पॉसिबल कि एक साथ एक जीव एक समय में दो जगह रहे, बट जो हमारे पास प्रेजेंट डायमेंशन से टाइम के वो बहुत बड़े हैं, हमारे समय के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो जैसे आपने नहीं देखा कि मैं बहुत जल्दी 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 अपने हाथ को ऐसे ऐसे करूं, थोड़ी देर बाद दिखता है कि हाथ कहीं नहीं, पूरा पूरा हाथ आपको दिखने लगेगा।
हाँ।
डूइंग इट सो फास्ट, जैसे कि कबूतर की आंख है तो एक ही है बट वो दोनों जगह दिखती है, इट्स डूइंग इट सो फास्ट। तो आई एम सेइंग कि वो वाला इल्यूजन दिख सकता है कि वो सौदर्य मिंद्र तो यहीं पर ही है यार, वो गया कहाँ?
बराबर
बराबर। बट आप समय को देखोगे तो इस समय में वो एक जगह पर एक व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो आधी चीजें जो साइंस इज डूइंग इज फॉर वेन, जैसे कि वो एक पिल निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे मनुष्य इमॉर्टल बन जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। वो एक गॉड पार्टिकल को बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे हम कुछ नया बना सकें, दैट इज इम्पॉसिबल। वो टाइम ट्रेवल की कोशिश कर रहा है बट टाइम ट्रेवल में गोइंग टू पास्ट एंड गोइंग टू फ्यूचर इज इम्पॉसिबल। वो एक साथ में दो जगह रहने की कोशिश, सो एवरीथिंग दैट साइंस इज वेस्टिंग इट्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी इन द रिसर्चेस, दे ऑल आर पॉइंटलेस। बट ठीक है, अब नहीं किसी को टाइम तो काम नहीं है कोई दूसरा तो क्या करेगा कोई। एक समय में एक द्रव्य के दो कार्य नहीं हो सकते, एक समय में एक द्रव्य दो अलग अलग जगहों पे नहीं हो सकता, उसका अनन्य स्वभाव है, अखंड स्वभाव है, इट इज नॉट पॉसिबल। बट यदि आप अपने डायमेंशंस को समय को नहीं लेके सेकंड करोगे तो आराम से हो सकता है। मैं एक सेकंड में आपको लगूंगा यहीं पर ही हूँ बट मैं उतने में घूम के आ गया, क्योंकि एक सेकंड में संख्या तो आवलियां है और एक एक आवली में जगन्य परित संख्यात नहीं जगन युक्त संख्यात समय है, इट्स वो बहुत है, बहुत है मेरे लिए, जैसे कि वो सेंचुरी है एक। सो आई कैन गो, मैं वहां पर नमस्कार कर सकता हूँ आराम से, आई कैन कम बैक।
हमें पकड़ में नहीं आता ना, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो
तो यही है। हाँ
दूसरा मुझे पूछना था कि वो जो आहार शरीर की बात हुई वो द्रव्य संग्रह में आता है कि एक दाएं हाथ से एक जमणा हाथ एक दूसरे
शुभ होता है एक अशुभ होता है,
तो मस्तक से भी निकलता है वैसा भी मैंने कभी पढ़ा था।
हाँ ये सब तो ये जो हम डिटेल में जाते हैं इंटीग्रिटीज में तो थोड़ा अलग अलग आचार्यों के मत मिलते हैं। जैसे कि एक जगह जो फेमस स्टोरी है अपनी द्वारिका दहन की, तो द्वारिका जली तो कौन से मुनिराज थे वो जिनने जलाई?
दीपायन मुनिराज,
दीपायन मुनिराज बराबर। तो अब इसमें दो अलग अलग स्टोरीज मिलती हैं आगम में अपने आप। वन स्टोरी सेज कि वो वहां पर गए, वहां पर यादव के वो बच्चे थे, उन लोगों ने उनकी इंसल्ट करी शराब पीकर, एंड देन बाद में वो व्यंतर बन गए, मतलब उनका मरण हुआ, वो व्यंतर बने, व्यंतर बन के उन्होंने जलाया। दैट्स वन स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी इज उनके शरीर से अशुभ तेजस का पुतला निकला। राइट, तो दोनों स्टोरी हमारे आगम में आती है। राइट, अलग अलग आचार्य से अलग अलग वर्जन है, तो उससे फिर वो जले। तो ऐसी आहारक शरीर भी दो तरीके से होते हैं, वो अलग अलग, बट वो सारी उसकी डिटेलिंग है। रफली कंसेप्ट ये है कि आत्मा के प्रदेश ब्रेक नहीं होते और इट इज पॉसिबल कि वो यहाँ से ट्रेवल करें। किसी को बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो कि मरने के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तो आखिरी अंतर मुहूर्त में उसके जीने के वो उस जगह को छू के आता है और उसको पता पड़ जाता है कि मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। इसको मायनांतिक समुद्घात कहते हैं।
तो फिर वो वापस आ जाता है कि वहाँ ही कहीं प्रदेश से
वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, लेकिन वापस आके फिर बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। एकदम आखिरी के अंदर मुहूर्त में वो छूट जाता है। तो इट्स वेरी रेयरली कि वो बता पाएगा कि वेयर इज गोइंग। मायनांतिक समुद्घात है, एक वेदना समुद्घात है। जब बहुत वेदना हो जाती है तो आत्मा के प्रदेश थोड़े बाहर निकलते हैं। कोई क्वेश्चन अभी तक? तो ये जो छह द्रव्य हैं, ये छह द्रव्यों से ही पूरा साइंस है, पूरा विश्व है, और इनके अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है। इन छह द्रव्यों को जो देखने की कला है वो सात तत्व है। छह द्रव्य इज द स्ट्रक्चर एंड सात तत्व इज द वे टू लुक एट इट। ये मतलब क्या, व्हाट सेंस टू मेक आउट ऑफ ऑल दीज सिक्स सब्सटेंसेस। यदि हम छह द्रव्यों को सात तत्व की दृष्टि से देखना सीख जाते हैं तो हमें निश्चर व्यवहार मोक्ष मार्ग तुरंत शुरू हो जाता है। ठीक है, सो आकाश काल धर्म अधर्म जीव पुद्गल, ये सारे द्रव्य में से एक ही द्रव्य ऐसा नहीं है जो कि कम इम्पोर्टेंट हो, जिसके बिना वस्तुवत्ता का काम चल जाएगा, नॉट पॉसिबल। हर एक द्रव्य वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज इट्स ओन रोल, और ये पूरी वस्तुवत्ता की सुंदरता को बनाए रखते हैं इस मतलब पूरे के पूरे विश्व में। इसलिए मुनिराज कहते हैं एक जगह नीति वाक्य है कि तत्वज्ञानी को इस जगत में कुछ भी अव्यवस्था नहीं दिखती, क्योंकि उसने पूरी वस्तुवत्ता को समझा कि जो हो रहा है वो मतलब शेर यदि किसी हिरण को मार के खा रहा है, इज इट जस्टिफाइड और इज इट अनजस्टिफाइड।
वो हर एक द्रव्य का परिणाम वैसा होना,
कैसा होना, शेर हिरण को खा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक शेर हिरण को खाता है और एक आदमी हिरण को खाता है, पाप किसको ज्यादा लगेगा?
आदमी को।
क्यों?
क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, विशेषण वो खा
ले। अरे शेर को भूख लगी उसने हिरण को मार के खा लिया, आदमी को भूख लगी उसने खा लिया, एक ही काम तो किया था उन्होंने। तो ये विज्ञान इसका हवाला देती है कि ये फूड चेन है। फूड चेन है तो मतलब ये तो ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो मतलब यू नो लाइक ये आजकल इतना कठिन हो गया है, मैं आपको बताऊं So you know what these like Darwin's theory of evolution. So I was talking to my friend, वो थोड़ा ईस्टर्न फिलोसफीज में बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, हिंदी फॉलो हिंदुइज्म, ठीक है. तो आई वॉज टॉकिंग एंड मैंने पूछा कि चलो ठीक है, तो ये जेनेसिस कैसे होता है, दुनिया कैसे बनती है. तो दे सेड कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वही है. मैंने बोला बट इट डजंट मेक सेंस कि हम ऐसे इवॉल्व हुए. तो बोला नहीं, देखो विष्णु जी के अवतार भी तो ऐसे ही हैं. तो डार्विन की थ्योरी बोलती कि सबसे पहले समुद्र था और उसमें जीव थे.
हाँ,
और उनका पहला अवतार है मत्स्य का, मछली का, राइट. एंड देन दे रिलेटेड एंड इट एक्चुअली सिंक, वो बिल्कुल सिंक होती है डार्विन की थ्योरी के साथ, राइट. उनके सारे अवतार, वो अलग बात है कि उन्होंने उसमें बुद्ध को भी उनका अवतार मान के बोल दिया कि ही वॉज द अवतार फॉर मोक्ष और ऐसे. बट इट्स अगेन मतलब मैं ये सोच रहा था, मैंने ये सुना जब कि फिर यार ये तो मतलब इस दुनिया में कितना इजी है किसी को किसी भी चीज से लिंक करके कुछ भी जस्टिफाई कर देना. एंड नाउ इट हैज अ साइंटिफिक बैकिंग, सो आई एम नाउ दे आर मोर कॉन्फिडेंटली बिलीविंग इन दिस कि हाँ ऐसे ही हुआ है, विष्णु जी के अवतार यही है, राइट. सो मतलब ये ग्रहित विख्यात में सच, मतलब मैंने जब सुना एंड आई वॉज लाइक मतलब आई कुडंट इवन से कि मैं उसको आर्ग्यू करूं कि नहीं करूं, बिकॉज द बिलीव वाज सो स्ट्रांग, सो कॉन्फिडेंट. हाँ यार ये तो साइंस भी यही बोलती है, इट्स सेम थिंग, ये तो वही है. बट फिर मुझे लगा कि हमको भी एज अ जैन रैशनल रहने की कितनी जरूरत है कि हम भी साइंटिफिक बैकिंग को हमारे टेक्स्ट को जस्ट प्रूफ करने में तो नहीं लग गए कि हमने उन दोनों से बाहर आके पीछे होके भी देखा है कि ऐसे ही है कि नहीं है, राइट. ये हमें बहुत सोचने वाली बात रहेगी. लेकिन थैंकफुली हमारे पास सिर्फ 6 द्रव्य, हमारे पास कोई पर्सन नहीं है जिसको हम आइडियलाइज कर पाए जैसे कि एक अवतार हो. तो हम अकेली जीवों के साथ, हम वस्तुओं के साथ बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर जस्टिफाइड, बिकॉज वी आर डीलिंग विद बेसिक साइंस, ठीक है. बट बहुत कठिन है यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप जितना सुनो जस्टिफिकेशन की, यदि आप दूध पीते हो तो आप अंडे भी खा सकते हो, सो देर आर मेनी जस्टिफिकेशन दैट आर डूइंग रोज ओवर दीज डेज. एवरीथिंग इज बैक्ड बाय साइंस एंड रिसर्च. तो फिर बताइए, आदमी को ज्यादा लगेगा पास के शेर को, और फूड चेन में मतलब क्या, तो इज जस्टिफाइड के शेर खा ले. शेर अपराध कर रहा है कि नहीं कर रहा, यदि कोई तत्व ज्ञानी यदि कोई है तो उसकी दृष्टि में शेर अपराध कर रहा है कि नहीं कर रहा.
अपराध
हाँ हाँ. तो लाइक यदि आप लोग को हम रूल्स बनाने के लिए देंगे तो आप लोग सारे शेर लोगों को, हिरण को मारना बैन करवा दोगे या हमारे राज्य में कोई भी शेर हिरण को नहीं खाएगा? अरे घास फूस खाएं, फ्रूट्स खाएं. मतलब ये जो हम बोलते हैं कि शेर ने हिरण को मार दिया, ये हमारे अंदर की दया बोलती है, करुणा बोलती है, क्योंकि हमने ये विचार किया है कि जीव को दुख से डर लगता है और उसको सुख चाहिए, राइट. बट अब एक जगह के लिए हम इस दया वाले पार्ट को अलग रखते हैं और हम यहाँ पर एकदम रैशनली देखें तो ठीक है, शेर मार रहा है, इस हिरण के झुंड में 12 हिरण थे, 11 भाग गए, इसको ही क्यों पकड़ा उसने इस बार आज के दिन? और ऐसा तो नहीं है कि 12 के 12 हिरण शेर के द्वारा ही मारे जाएंगे, कुछ नेचुरल डेथ भी मरेंगे, राइट. तो क्या यदि उस हिरण ने शेर के द्वारा भी खाया जा रहा है तो हिरण पाप के उदय में खाया जा रहा है कि पुण्य के उदय हिरण का?
पाप का.
तो पाप का उदय आया है, तो पाप का उदय आया मतलब पाप का परिणाम पहले हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा?
होगा
तो पाप के परिणाम के बिना तो पाप का उदय आता नहीं। तो पापी को सजा देना पाप है कि नहीं है? नहीं है। इसमें गलत क्या हुआ, शेर ने उसको खा लिया? तो ज्ञानी की दृष्टि में इस जगत में कुछ अव्यवस्था चल नहीं रही है। लेकिन हाँ, अब यदि कोई ज्ञानी होगा तो वो इसको देखेगा ऐसे कि देखो इसने अपने पाप के कारण खुद को कितना दुखी किया, और देखो ये शेर अब अपने पाप के कारण अपने आप को कितना दुखी करने वाला है। तो ये उनकी समता है, ये उनकी करुणा है, दोनों के प्रति है। उनको ऐसा नहीं शेर पे गुस्सा आ रहा है, शेर पे भी दया आ रही कि अभी रियलाइज नहीं कर रहा है कल का ये हिरण यही है। कबहू आप भयो बलहीन, सबिलनी करी खायो अति दीन, और कभी आप ही बलवान हो कि दूसरों को खा लिया। तो ज्ञानी की करुणा इसलिए बायस्ड नहीं है कि वो अकेली हिरण की साइड रहेगी, नहीं यार हिरण के पास ताकत नहीं है, हमको उसकी पार्टी में रहना चाहिए। दे ऑल्सो केयर फॉर दैट लाइन केयर, उसका फ्यूचर है, वो भी मरेगा, वो भी हिरण बनेगा, वो भी खाया जाएगा या कुछ और बनेगा, बट उसके पाप परिणाम का फल आए बिना नहीं रहेगा। करेक्ट।
उसके दृष्टि में पक्षपात नहीं है कि ये
पक्षपात भी है। तो ये छह द्रव्य के स्ट्रक्चर में यदि हमको रैशनैलिटी एक बार आ जाए कि यहाँ पर ये सब खेल रहे हैं बस, सारे के सारे द्रव्य, छह द्रव्य, ये तीन लोग इज नथिंग बट द इंटरपर्सनल क्या बोलेंगे इसको, इन सब का एक कम्युनिकेशन काइंड ऑफ, इनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से पूरा तीन लोग बना हुआ है, और ये सब बस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। यहाँ पर रिझाने जैसा, आकर्षित होने जैसा कुछ भी नहीं है। तो छह द्रव्य को जान लेने के बाद हम जब सात तत्व की दृष्टि को लेते हैं तो सारा जगत पत्थर कंकड़ के समान मालूम पड़ता है, क्योंकि हर जगह एक ही काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम आश्रव तत्व के लिए बहुत अच्छी सुंदर चर्चा है, आश्रव पांच कारण बताए हैं यहाँ पर, हम उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज बताइए, मैं छह द्रव्य को कंप्लीट कर लिया है अभी। Any questions? ठीक है।
Next week छह द्रव्यों को सात तत्व की दृष्टि से देखना थोड़ा और
ठीक है। हम वो अब आश्रय तत्व से शुरू होगी ना वो दृष्टि, कि कौन सी हमारी प्रेजेंट दृष्टि है और फिर हमें कैसी रखनी है। ठीक है, अभी के लिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।
अच्छा डारा, आज आठवीं त्रीजी ढाल में आठमो श्लोक।
जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिमवानी माँ को वंदना सतबार है, उसके लिए चिमवानी माँ को वंदना सतबार है।
जय जिनेन्द्र, थैंक यू।
जय जिनेन्द्र, थैंक यू।
जय जिनेन्द्र, थैंक यू।
आप प्रवचन बड़ा रिकॉर्ड करे चुके।